नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज फोन पर बातचीत हुई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हाल की मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान करता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस दिशा में किए जाने वाले सभी प्रयासों का समर्थन करता आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें आशा है कि आने वाले दिनों में भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत होती रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अगर चाहें तो रूस के साथ युद्ध समाप्त कर सकते हैं। आज रात जेलेंस्की के साथ मुलाकात से पहले उनका ये बयान आया है। श्री ट्रंप ने 2014 में ओबामा प्रशासन के दौरान क्रीमिया पर रूस के कब्जे का भी हवाला दिया और यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल करने की संभावना से इनकार किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हुई। इस दौरान अपने प्रारंभिक भाषण में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों में एक कठिन दौर देखने के बाद अब आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को तीन परस्पर मूल्यों, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतभेदों को विवाद या प्रतिस्पर्धा में नहीं बदलना चाहिए।
Having seen a difficult period in our relationship, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict.
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण मुद्दे पर बाधित रही। लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही एक बार स्थगित होने के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में आज भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पारित हो गया। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों सहित अन्य बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना कर उन्हें सशक्त बनाना है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक उत्तर में बताया कि ये विधेयक एक सुधारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक सभी तटीय राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद लाया गया है।
Just brought to this August House after going through wider consultation with all the coastal states and also the other stakeholders, user of the ports, exporter, importer, all the connected stakeholders. So this is the power of the vision of our honorable Prime Minister. This is through which we are going to make India one of the leading maritime nation in the world under the dynamic leadership of our honorable Prime Minister Narendra Modi.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। श्री रिजिजू ने आज संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि जब निर्वाचन आयोग कोई काम करता है और इस पर किसी को कोई आपत्ति है तो उसे आयोग को पत्र लिखकर अपील दायर करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। श्री शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद कल ही भारत लौटे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने अंतरिक्ष यात्री श्री शुक्ला के साथ अंतरिक्ष में उनके अनुभवों सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, केरल, माहे, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के कपिल ने जूनियर वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी स्पर्धा में भारत के जोनाथन एंथनी ने कांस्य पदक जीता। उधर सीनियर वर्ग में भारतीय पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। चीन की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।